उनका थोड़ा सा अगर आप 2-4 मिनट में अपने वो थोड़ा सा बता दें, ये साथी शौक रखते हैं।
बस अगर कोई उससे इस्तेफादा कर सकते, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सलफ़ी वालदेन के घर पैदा हुआ, और
जी अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह कम।
इंडिया में हम लोगों का इलाका एक ऐसा इलाका था जिसको बस्ती का नाम है पिपरा, और बयान किया जाता है कि उस इलाके में अंग्रेज़ों का कोई असर नहीं रहा है आखिर दम तक। और हुआ ऐसा कि वो कहीं से भाग के आए थे, कोई बादशाह था, एक गांव की लखनऊ और इसके दरमियान थी, वहाँ से कोई राजा था उसके जुल्म से भाग के आए, तो ये इलाका था जंगल का, दूर तक काट करके इन्होंने और अपने अपना कब्जा किया और बहुत दिनों तक उसी में जीते रहे। फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में आखिर में कोई आया तो उसको मार और करके भगा दिया। उधर आते ही नहीं थे अपनी हुकूमत, और हमारे दादा उस मैं जानता हूँ अच्छी तरह, 45 साल तक उस 3 गांव के जो ख़ानदान थे उनके ज़िम्मेदार रहे। और हमारे परदादा में एक भोज बाबा थे, वो मस्जिद अब भी खड़ी है 400 साल की तरह, बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह उन्होंने बनाया, और उसकी तारीख़ है, बताया हमारे परदादा ने कि वो ऐसा हुआ कि मस्जिद की बुनियाद उन्होंने रखी तो 4-5 भाई थे उसमें से एक मर गए, तो वो पुराना अकीदा गलत किस्म का था, कहा कि भाई मस्जिद नहीं रोती है, यानी मस्जिद हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, मस्जिद ठप कर दिया। 12 साल तक बुनियाद रख के मजबूत हो गई हो, अब उसके बाद उसमें से एक निकले कहीं बाहर, कहते हैं दिल्ली तक पहुंचे पढ़ने के लिए, वहां से आए तो कहते हैं चाहे कोई एक फर्द भी नहीं घर का रह जाए, मस्जिद को बनाना है तो बनाया। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं हमारे हाथ से, हमारे ख्याल से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह खड़ी है वो मस्जिद अब भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने दादा को देखा, हमारे यहाँ कानून उन्होंने बना रखा था कि इस्लामी जो कर सकते हैं अहकाम की तनफीज़, कोई शराब नहीं पी सकता, कोई और गलत काम नहीं कर सकता, रात में 12 बजे के बाद देखा जाए तो उसको पकड़ करके सरजनिश की जा सकती है, 2 आदमी गलत काम किए उनको कोड़े लगाते हुए मैंने खुद देखे, छोटा था आम का बड़ा सा दरख्त था उसके सामने हंगामा हुआ, खड़ा उनको ला के और औरत को मुंह बांध करके और फिर उसके बाद कोड़े लगे, सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह करके बेफज़लिल्लाह ताला ऐसे ही इलाके में पैदा हुए, आखिर दम तक हमारे यहाँ गाय का कुर्बानी होती थी, चारों तरफ से लोग आते थे, आसामी लोग जो थे, हम लोग ज़मींदार के नाम से मशहूर थे, तो आसामी लोग ला करके पैसा दे के जाते थे हमारे नाम की कुर्बानी कर देना और गोश्त पहुँचा देना, वही हमी लोग इन्हीं यही लोग पहुँचाते थे, बहरहाल ये सब था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन अब जो है वो ज़िल्लत के उसमें जो नई हालत है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद और हम लोगों का खान के नाम से मशहूर किए हैं, तो ये लोग पढ़ते नहीं थे, होता ऐसा था कि एक पीर ख़ानदान और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ी ला के बसाए थे बहुत दिनों से, उनकी जिम्मेदारी घर बना करके देने की, खिलाने पिलाने की, सब पूरा अपने दादा ही के ज़िम्मे था, और उनका काम था सिर्फ पढ़ाएं बच्चों को और नमाज रोज़ा जनाजा ये सब, इस तरह कोई पढ़ता नहीं था। जब मैं निकला हूँ पढ़ने के लिए तो लोगों ने बड़ी इज्जत की हमारी, इसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला हर एक को जजाए खैर दे, मैं दुआ देता हूँ, कहा हमारा बच्चा जा रहा है पढ़ने, तो इतनी खुशी। उस ज़माने में बस मिलती थी 1.5 किलोमीटर दूर, यानी आप ये सोचें कि कम से कम 70-80 मर्द औरतें हमारे रुख्सत के लिए जाते थे, और हर एक जेब में अपने ख़ानदान ही कोई खाला है कोई है, भरते जाते थे। मैं बहुत मालदार था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कितने लोगों को बनारस पढ़ते हुए मैंने कर्ज़ दिया। मैं 66 में जब आया हूँ इधर, अल्लाह की कुदरत से कैसे दाखिला हुआ जिसका कोई तसव्वुर नहीं, जब मैं आया यहाँ 66 में तो मुझे याद आता है कि हम $65 हमने भुना के ला करके मदीने में, और पहले मरतबा पहुँचा तो किताब ख़रीदा, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। बहरहाल अल्लाह की कुदरत इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पले, और फिर वहाँ हम गांव के इलाके स्कूल में पढ़ करके फिर अपना सैयद नज़ीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 2 शागिर्द, एक जिनको हमारे परदादा ने भेजा था सैयद नज़ीर हुसैन के पास पढ़ने के लिए, मौलाना अमरुल्लाह हमारे ही गांव के पीर ख़ानदान के जिनको रखा था, वो पढ़ के आए, बहुत ही नेक आदमी और बहुत ही मुस्तजाबुद दावत, वालिद साहब उनका जिक्र करते हैं करते थे, तो वो और एक मौलाना इबादुल्ला दोनों साथी थे, गए थे दिल्ली में। सैयद नज़ीर हुसैन का नाम आप लोग सुनते होंगे, दिल्ली में जो बहुत बड़ी 60 साल तक हदीस शरीफ की उन्होंने खिदमत की, फिर आए तो इन्होंने स्कूल कायम किया, उस स्कूल में अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिशकात शरीफ तक होती थी, 3 साल मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मौलाना नज़ीर अहमद अमिलवी जो जामिया रहमानिया बनारस में सर जामिया रहमानिया में पढ़ाते थे, वो आए, जलसा कोई था तो उसमें उन्होंने वहाँ पहुँचे जब, तो हमारे उस्ताद ने कहा कि इनको आप वहाँ ले जाइए, अब यहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो गई। ऐसे जाए बहुत छोटे अभी हैं, उम्र छोटी थी, कद भी छोटा था, तो उन्होंने कहा भी बहुत छोटे हैं, कहा मौलाना लेकिन आपके मेयार, वो पढ़ चुके थे उनके पास, मौलाना जलालुद्दीन साहब कहते थे आपके मेयार पे बच्चा उतरेगा। कहा अच्छा लेके आओ, तो वहीं उन्होंने इम्तिहान लिया तो बहुत खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और कहा कि तुम्हारे इलाके के कोई पढ़ रहे हैं उनके साथ आ जाओ, गया वहाँ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जामिया सल्फिया जब कायम हुआ, जामिया सल्फिया में हम पढ़ रहे थे, तो जामिया सल्फिया के ओपनिंग के वक्त हमारा आखिरी साल था, उस वक्त आए शेख शेख बिन बाज को दावत दी थी लोगों ने वहाँ जाने के लिए, तो खुद तो नहीं गए लेकिन शेख अब्दुल कादिर सैयदुल हमद को भेजा, और उनके साथ हमद शुबैली जो थे उस वक्त वहाँ सफ़ीर सऊदी सफारतखाने के दिल्ली में, वो आए, और मैं भी उस वक्त भी कम अकल थे, हम लोग थे लड़के आए हुए थे बाहर से मऊ से और कहाँ कहाँ से, हमें बिल्ला तो दे दिया था कि ज़रा सा निगरानी को, लेकिन हम इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। अचानक स्टेज से आवाज़ आई कि फलां कहीं भी हो पहुँच जाएँ, सुन करके पेट हिल गया कि भाई हम तो गलती किए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, हम कोई जुर्म है। आए हुआ ऐसा कि शेख अब्दुल कादिर ने कहा कि हमें चार लड़के शेख बिनबा ने कहा है कि यहाँ जामे इस्लामिया पढ़ने के लिए ले आइएगा। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, मैं कहता हूँ अपने बच्चों को भी, तमाम बच्चों को तलकीन करता हूँ कि अल्लाह से बचपन की दुआ कभी रायगा नहीं हुई हमारी, अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। यकीनन दो दुआ हमेशा मैं पढ़ता था और अब भी वो पढ़ता हूँ, उस ज़माने से भी जबकि बहुत छोटा था, एक तो ये है रब्बना आतना फिद दुनिया हसना, बड़ी जामे दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त पढ़ चुका था, उसका माना समझता था। दूसरी दुआ रब्बि रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सजदे में हमने कभी नहीं छोड़ा, उसको भूल के छोड़ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ की बरकत से हमेशा अल्लाह ने बरकत दी, मेरे वहाँ में गुमान में भी नहीं था। उस वक्त जब मैं पढ़ता था बनारस में तो मेरा नंबर, मैं छोटा था लेकिन नंबर अच्छे से अच्छा आता था, तो पुराने नंबर के तहत उन्होंने मुझे भी चुना, जबकि दो तीन चार तीन आदमी एक साल से फारिग होकर के पढ़ा रहे थे, उनको लिया, मैं छोटा था मुझको भी लिया, तो नाम पुकार रहे थे वो तीन, तो हाजिर हो गए गाड़ी में, उनके काली गाड़ी मर्सिडीज पहली मरतबा मैंने देखी थी, वो खड़े दरवाजे पे बैठे थे गाड़ी में, और कहते हैं कि उनको लेके आओ, तो वो लोग कहते हैं अदब में कि आप लोग चलें क्लार्क होटल, हम उनको लेके आते, कहा नहीं लेके आओ, तो ढूंढ रहे हैं, मुझे आवाज़ दिया, मैं गया तो खींचे ले जा रहे हैं बकरी की तरह एक साहब, हमने कहा बात क्या है, कहा चल बंदे अल्लाह के, तो गए तो ढकेला गाड़ी में गए, तो जब क्लार्क होटल पहुंचे तो वहाँ उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लिया, तो अल्लाह का शुक्र है जो जिम्मेदारों ने उस वक्त बताया, कहा शेख अब्दुल कादिर सैयदुल हमद ने कहा असगरहुम अहसनहुम, जो सबसे छोटा है वो सबसे अच्छा है, अरबी हमारी उस वक्त भी हम बोलने की कोशिश करते थे, अल्लाह यहाँ लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह। जामे इस्लामिया में भी नंबर वार हर साल जो पास होता था उसी तरह उसकी सीटें होती थी बैठने की, पहले नंबर की जो पहला नंबर आया है, तो इस तरह हमारी पहली दूसरी रहा करती थी, आखिर में जब हम फारिग हुए तो हमने थोड़ी और मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे और पूरे कॉलेज में पहला नंबर रहा हमारा। और एक अल्लाह ताला की मेहरबानी और हुई कि जो लोग सोचते थे, बहुत से लोग अफ्रीका चले गए, कितने अच्छे अच्छे लोग अफ्रीका जाके दावतनामा, वालिद साहब का कहना था तुम आओ यहाँ अपनी ज़मींदारी में रहो और खेती जो कुछ थोड़ी बहुत है माँट ओंट करके जो कुछ मिली है उसी में रहो और इलाके को की इसलाह करो, यही जहन में बसा हुआ था कि जाना ही है। सुभान अल्लाह, किताबें भी बहुत कुछ पहुँचा चुका था मैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत जिस साल फारिग हुए तो सबसे पहले सऊदीया में एमए का शोबा खुला, एमए का कुलिया शरिया का और हदीस का शोबा खुला, और फिर मदीने के में आए चार उस्ताद आए जिसमें मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, अमीन मिस्री, अबुल वहाब, अबू सुलेमान जो इस वक्त हय्यत कबीर उलमा के हैं, वो लोग आए इम्तहान इंटरव्यू लेने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह का शुक्र है कि हमने मदीने, वालिद साहब जाते आते हुए उन्होंने कहा, पहले तो रोक रहे थे अभी छोटी उम्र है जा करके तुम्हारा गुमराह हो जाओ, मैंने कहा मैं मदीना जा रहा हूँ और मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा, ये वादा है। कहा अच्छा कुरान याद करना, तो हमने वहाँ कुरान याद करने की कोशिश की पूरे तौर पर, वक्त नहीं ज़ाया किया, छुट्टी के वक्त असर के बाद या तो शेख हम्माद के यहाँ या शेख साले के यहाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा हुआ। इंटरव्यू में जब बैठे तो जो असाज़ा बैठे थे हमारे साथ उनसे अच्छा हमारा जवाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। शेख डॉक्टर तकीउद्दीन हिलाली मर्राकुशी के घर रहने की वजह से अरबी अदब भी बड़ी अच्छी रही अल्लाह के फजल से, तो उसमें भी अच्छा नंबर। तो शेख अमीन मिस्री जो हेड थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा नंबर सबसे ऊंचा है, देखिए एक चीज़ होती है ऐसी मजलिसों में जो चीज़ कोई नई मिले उसको कैश कर लेना चाहिए। एक किताब जरह तादील की है, जबकि वो जो लोग एमए वगैरह करते हैं उसी में रिजाल को देख करके हदीस की तस्हीह तौदीफ। शेख हम्माद अंसारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके यहाँ बैठ करके रात उनके असर के बाद तो कोई हदीस ढूंढते कहते ज़रा ये इसका तर्जमा देखो इसका तर्जमा देखो, तो इन सब किताबों का नाम और मौजू सब अच्छी तरह मालूम। तो उन्होंने पूछा कि जरह तादील का मौजू क्या है, हमने कहा ये किताब इस माने में है ये और वो। और ये एक लफ्ज़ हिलाली साहब डॉक्टर तकीउद्दीन हिलाली के घर पे मैं हुआ करता था, तो उनको किसी किताब की ज़रूरत पड़ी ढूंढने की कि 100-150 साल पहले छपी है, मुझे याद है कि हिंदुस्तान में हमने पढ़ी है, जाके देखो यानी कहाँ छपी है। तो कहाँ किस में देखें, एक किताब है एक बैरूत के एक ईसाई आदमी मनसरानी आदमी ने लिखा है इलियास तरकीस मौजम अलमतबूआत इस्लामिया, इस्लामी किताबें जो छपी हैं उनका उनकी उनका इंडेक्स ये फला सन में छपी हिंदुस्तान में बांकीपुर में कहाँ कहाँ पूरा डिटेल। तो पहली मरतबा उनसे सुना मैंने सुनी ये बात कि ये किताब इस मौजू की है। इत्तेफाक़ से जो इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ अब्दुलवहाब अबू सुलेमान, तो ख़ास तौर पर एम ए वगैरह के लिए मालूमात होनी चाहिए कि मराजे जहाँ से आप किताब किस किताब से ये चीज़ ले सकते हैं वो चीज़ ले सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसी किताब के बारे में तुम्हें, हाँ उन्होंने पहले चैलेंज किया, कहा एक सवाल ऐसा है कि हमने कई लोगों से पूछा किसी ने नहीं जवाब दिया, पूछूँ? हमने कहा पूछिए, बड़े खम ठोक करके हमने भी कहा पूछिए। तो मुस्तफ़ा आज़मी हिंदुस्तानी उन्हें बड़े बहुत खुश हुए जब मैंने ऐसे ही दिलेरी से कहा, कहते हैं किसी ने उसका नहीं जवाब दिया तुम दे सकते हो, हमने कहा अल्लाह ताला तौफीक देगा। तो उन्होंने कहा हमें अगर किसी किताब के बारे में मालूम हो कि कब छपी है तो किस मर्जा और किस किताब से मैं देखेंगे, तो हमने कहा मौजम मतबूआत इलियास तरकीस, फड़क गए, कहते तुम कहाँ पढ़े हो कैसे, तो मुस्तफ़ा आज़मी हिंदुस्तानी, कहते जानते हो हिंदुस्तान वाले आलिम होते हैं उन्होंने उनको, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र। और मैं ये इसमें नसीहत भाइयों के लिए बच्चों के लिए देना चाहता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, जो नई चीज़ मिले हर जगह नहीं मिलती इस तरह की चीज़ें। तो वो एक मरतबा शेख ने हमसे कहा था कि ज़रा इस किताब के बारे में देखो, वो चीज़ ज़हन में थी और उससे जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल एमए पढ़ने आए, एमए में अल्हम्दुलिल्लाह हमने थेसिस जल्दी से मुकम्मल किया, फिर उसके बाद पीएचडी का रास्ता बंद था, जहन में यही था कि हमें हिंदुस्तान जाना है। जिस साल पीएचडी, वही मैंने कहा कि अल्लाह ताला के ने इतना एहसान किया, जिस साल एमए से फारिग हुए पीएचडी भी खुल गया और पीएचडी में सबसे पहला मेरा मुझे कबूल किया गया। और फिर वो जुहैमान का हादसा हुआ, तो घर में बैठ करके उस वक्त मैंने 15 दिन बाहर निकलना ज़रा सा ख़तरनाक था, 15 दिन में बहुत काम किया, यानी 200 अहादीस की तखरीज, और हमने रात दिन नींद नहीं आई फौरन उठे। और घर में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा किताबों का ज़खीरा रखा, किताब ख़रीदता था या फिर भाइयों के लिए कुछ खिदमत के पैसे भेजते थे, तो हमें लाइब्रेरी वगैरह भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हम नोट कर लेते थे कि फला कलमी नुस्खे में इसको देखना है, तो एक दिन हफ्ते में या 15 दिन पर चले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2.5 साल के अंदर पीएचडी का थीसिस पेश किया और 1400 में वो हादसे की वजह से उस वक्त यूनिवर्सिटी बंद रही, जब मुहर्रम की तारीख हुई तो उसको हमने जब जामिया खुला और अमन हुआ मक्के में तो हमने पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह 1401 में हमें डिग्री मिल गई पीएचडी की बफ़ज़लिल्लाह ताला हदीस शरीफ में। उसके पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हरम पाक में मैं मुझे पढ़ाने को ले लिया था, ऐसे ही रास्ते अल्लाह ताला खोलता रहा, फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रास्ता खोला ऐसा कि हमें उसी वक्त बैठा दिया था, बाहर के लोगों को जो गैर सऊदी होते हैं उनको हरम में दर्स देने से मना किया जाता था है, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फजल से बहरहाल उन्होंने जिम्मेदारों ने शेख सुवैल थे और सुलेमान बिन उबैद थे, उन्होंने फतवा और दर्स देने के लिए मुझे उसी वक्त बैठा दिया था। हज में अरबी में दर्स देता था और उर्दू में भी दर्स देता था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद फिर जामिया फारिग होकर के हम जामिया में चले गए पढ़ाने के लिए, तो फिर हालात बने अल्लाह ताला ने दी नेशनलिटी के बाद, फिर हमें नहीं मालूम था, जिम्मेदारों ने हरम के लिखा बादशाह मुअज्जम को, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे शाफ़हद, तो उनके पास लिखा, वो होता ऐसा है कि नाम दे करके सर्टिफिकेट हमारी उनके पास थी, क्योंकि उन्होंने एडवाइज़र के हैसियत से मुझे ले लिया था यूनिवर्सिटी में होते हुए, हम चूंकि उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो उसकी हैसियत यह है कि वजारत तालीम आली से हाई स्टडीज़ से इजाज़त मिल सकती है कि ये कहीं और مستشار یا ایڈوائزر کے حیثیت سے کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے رکھا دیا 3 سال تک. پھر اس درمیان میرے کاغذات تھے, مجھے معلوم نہیں تھا. انہوں نے بھیجا شیخ بن باز کے دفتر میں, سی آئی ڈی وغیرہ میں بھیجا کہ آدمی کیسا ہے. سب میں الحمدللہ اچھا ہی رزلٹ رہا جیسا کہ ہوا. مجھے معلوم نہیں تھا, اچانک بادشاہ کے دستخط کے ساتھ آیا کہ حرم میں درس دیں. تو شیخ سبیل نے اس وقت بلایا کہ آ کر کے تم ملنا چاہتے ہیں. شیخ سبیل کے لڑکے ڈاکٹر عمر نے کہا کہ والد صاحب 5 بجے آج ملنا چاہتے ہیں آپ سے. تو میں گیا تو انہوں نے باقاعدہ جو قرار ہوتا ہے یا کیا کہیں گے اس کو, قرار اداری کو جی جی, وہ سب لکھ کر کے تیار کر کے اور مجھے دکھایا. تو میں یقیناً ایک خوشی میں, خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں, وہ چھلک آئے. اور مجھے خبر بھی نہیں تھی, جیسے ایک نعمت غیر مترقبہ جس کا انتظار رہا بھی آدمی نہ سوچ نہ پائے. تو انہوں نے کہا جا کر کے کوئی اچھی جگہ کرسی لو. اور اس کے بعد سے آج 17 سال یعنی نہیں 15 سال ہو رہا ہے الحمدللہ, جب سے میں الحمدللہ بخاری شریف ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد داؤد بھی آدھے سے زیادہ ہو گئی اور وہ اصول حدیث کی 3-4 کتابیں پڑھائیں. الحمدللہ یونیورسٹی کے اچھے اچھے لڑکے بھی بیٹھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالی نے یہ زندگی گزاری اور اللہ کا شکر ہے کہ حرم کے سامنے میں کھل کر کے کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھیں گے قرآن حدیث کے علاوہ, اگر نہیں معلوم ہے تو نہیں بتاؤں گا. کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھتے تھے, عطا ابن ابی رباح بیٹھتے تھے. اگر ہم خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سالم نہیں رکھے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال صحیح بات بولنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے اور اپنے دین کی خدمت لے.